نحمده ونسلي ونسلم على رسوله الكريم المبعوث. بیعت ہونے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اپنے مشائخ کے سلسلے کے واسطے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے ایک روحانی تعلق نصیب ہو جاتا ہے.
بیعت ہونے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے مشائخ کے واسطے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک سے تعلق نصیب ہو جاتا ہے. وہ کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قلب جڑ گیا, اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قلب سے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قلب جڑ گیا. قلب یعنی دل. یہ دل سارے جڑتے 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 آپ کے شیخ تک پہنچے. آپ کے شیخ کا دل جڑا ہوا ہے ان کے شیخ سے, ان کا دل جڑا ہوا ہے ان کے شیخ سے, ان کا دل جڑا ہوا ہے ان کے شیخ سے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کے شیخ کا دل اس سارے مشائخ کے واسطوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے جڑا ہوا ہے. تو منبع فیض جو ہے وہ مشائخ میں سے کوئی نہیں ہے, منبع فیض تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے. فیض تو وہاں ہے. اسد فیوز در مصطفیٰ کا کیا کہنا, اسد فیوز در مصطفیٰ کا کیا کہنا, جسے جو بھی سعادت ملی جتنی ملی وہیں سے ملی. یہ مشائخ بیچ میں واسطے ہیں, اور واسطے ہونے کی وجہ سے وہ صاحب فیض ہو جاتے ہیں. اصل فیض تو وہاں سے آ رہا ہے. اگر شیخ کا دل اوپر والے سلسلے اور اوپر والی چین سے نہ جڑا ہوا ہوتا تو شیخ سے ہمیں کچھ نہ مل سکتا. اب جب ہم اپنا دل شیخ سے جوڑ لیتے ہیں اور اس سے مرید ہو جاتے ہیں, تو ہمارا دل جب ہمارے شیخ کے دل سے جڑ جائے گا, اسی لیے بیعت ہونے کے لیے وہ چیزیں ضروری ہیں جس سے دو دل آپس میں جڑ جاتے ہیں. وہ دونوں چیزیں کیا ہے؟ ایک عقیدت اور دوسری محبت. تو محبت اور عقیدت سے دونوں دل جڑ جاتے ہیں. تو ہمارا دل جب ہمارے شیخ کے دل سے جڑ گیا تو شیخ کا دل تو پہلے ہی سے اس سلسلے کے واسطے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا ہوا تھا. تو اب جو فیض شیخ کے قلب تک آ رہا تھا وہ ہمارے قلب تک آئے گا. تو بیعت کا مقصد یہ ہے. بیعت اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم ہمارے دل میں جو روحانی فیض لانا چاہ رہے ہیں وہ اس وقت ہمیں حاصل ہوگا جبکہ ہمارا دل کسی ایسے سلسلے سے جڑ جاوے جو سلسلہ منبع فیض تک پہنچتا. اور اس سلسلے کی ایک مثال میں عرض کروں آپ کو کہ آپ نے ایک گھر بنایا, گھر بنایا اور گھر بنا کر بہترین الیکٹریکل کمپنی کو آپ نے کانٹریکٹ دیا, اور اس نے الیکٹریکل کنیکشن جو آپ کے گھر کی حد تک کا ہے وہ ایسا بنایا جیسا دنیا میں کسی کے پاس نہیں, وائر ایسے استعمال کیے کہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں, بلب ٹیوب لائٹ شینڈلیئرز ایسی یعنی مثال نہیں ملتی پوری دنیا میں. لیکن صرف ایک چیز باقی ہے, وہ یہ ہے کہ وہ پاور ہاؤس کے ساتھ نہیں جڑ رہا ہے. تو یہ بہترین چیزیں بھی بیکار ہیں جب تک کہ منبع فیض کے ساتھ کنیکشن نہ ہو جائے. اس لیے یہ منبع فیض کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا और जुड़ने के बाद फिर फैज को हासिल करना, ये तरक्की का जीना है, ये तरक्की का रास्ता है।
बैअत होने का मकसद ये है कि इंसान को अपने मशाइख के सिलसिले के वास्ते से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे मुबारक से एक रूहानी ताल्लुक नसीब हो जाता है।
अच्छा, अब इससे जो है ये भी मालूम हुआ कि बैअत होने का बहुत बड़ा फायदा है, बैअत होने का बहुत बड़ा फायदा है। इस्लाही ताल्लुक में वो चीज नहीं होती जो बैअत में होती है, तो बैअत होने का ये एक बहुत बड़ा फायदा है कि अगर कोई खुलूस के साथ, अकीदत मोहब्बत के साथ किसी मुनासबत वाले मुत्तबी शरीयत शेख से बैत होगा तो उसका कल्ब जो है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़ जाएगा, बैत का ये फायदा हुआ। इसीलिए एक शर्त ये है कि शेख सहीहुल अकीदा मुत्तबी शरीयत हो, इसलिए कि जो सहीहुल अकीदा नहीं होगा तो आप अपना कनेक्शन उसके साथ जोड़ रहे हैं जी, जैसे कि बेहतरीन हूवर है, बेहतरीन हूवर मशीन है, आला दर्जे का, आला क्वालिटी का, लेकिन प्लग को सॉकेट में आप दाखिल करने के लिए तैयार नहीं है तो कुछ नहीं होगा, जैसे कि फैज तो वहां से आएगा। अब आपने प्लग को सॉकेट में तो डाल दिया, लेकिन सॉकेट ऐसा है जो पावर हाउस के साथ कनेक्टेड ही नहीं है, फिर भी नहीं चलेगा। तो किसी शेख के हाथ में हाथ तो रख दिया लेकिन वो मुत्तबे शरीयत नहीं, वो सहीहुल अकीदा नहीं है, वो बिदअती है। आपने जिस सॉकेट में अपना प्लग दाखिल किया है वो सॉकेट तो मुंबई फैस के साथ जुड़ा हुआ ही नहीं है, तो आप खुश होते रहेंगे कि भाई हम भी बैद हो गए, लेकिन आगे होगा कुछ नहीं। तो प्लग को सही सॉकेट में डालना है, ऐसे सॉकेट में डालना है जो मुंबई फैज के साथ जुड़ा हुआ है। अब जो है वो पूरा रास्ता क्लियर हो गया, अब फैज आनंद फानन आ सकता है, लेकिन उसके लिए आपको एक और काम करने की जरूरत है, वो बाकी है। वो है कि हूवर मशीन की स्विच को ऑन करना पड़ेगा, और ये स्विच मशीन जो है ये मुजाहदा और मामूलत। अब आप अगर मुजाहदा और मामूलत की स्विच दबाएंगे तो देखो ये कैसे आता है फैज, यानी मिनटों में सेकंडों में फैज आएगा। तो ये दो चीजें बहुत जरूरी है, एक उधर और एक इधर, कि शेख सही हो और इधर स्विच आदमी चालू करे, मुजाहदा करे और मामूलत की पाबंदी करे, जिक्र अजगार वगैरह की।
वजाहत के लिए दो मिसालें पेश की जाती है। नंबर एक, एक आदमी नया घर बनवाए, खूब सजाए, वायरिंग करवाए, फानूस लगवाए, मगर उसके फानूस में उस वक्त तक रोशनी नहीं आ सकती जब तक कि वो वायरिंग का कनेक्शन पावर हाउस से न जोड़े। इसी तरह इंसान जब दिल के फानूस के कनेक्शन का सिलसिला मशाइख की वायरिंग के जरिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक से जोड़ता है, जो रहमत का खजीना है, तो फिर सालिक के दिल में रोशनी आती है।
लेकिन हमने उसमें एक इजाफा किया है स्विच का, ऐसे ही बैत हो जाने से वो फैज शुरू नहीं हो जाता, जुड़ तो गया है, लाइन बिल्कुल कनेक्शन सही है, लेकिन स्विच चालू करनी पड़ेगी, वो है मुजाहदा जी।
अनवार बरकात नबी अलैहिस्सलाम के कल्ब मुबारक से मशाइख के कुलूब से होते हुए सालिक के कल्ब में आते। दूसरी मिसाल, एक ट्रेन कई डिब्बों पर मुश्तमिल होती है, अगर उसके साथ एक डिब्बा जोड़ दिया जाए तो जहां ट्रेन पहुंचेगी वो डिब्बा भी पहुंच जाएगा। अब यू सोचिए कि सिलसिले के मशाइख ट्रेन के मानी हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ट्रेन के इंजन के मानी हैं और सालिक इससे जुड़ने वाले डिब्बे के मानी हैं। ये ट्रेन अल्लाह की रिजा वाले स्टेशन पर जारी है, अगर ये डिब्बा जुड़ा रहेगा तो जहां इंजन मंजिल पर पहुंचेगा थर्ड क्लास डिब्बे को भी मंजिल पर पहुंचना नसीब होगा।
अल्लाह ताला शानहू, लोग ईद मुबारक ईद मुबारक ईद मुबारक कहते हैं, तो मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला शानहू हमारी ईद को भी मुबारक करे और हमारी जिंदगी का हर सेकंड मुबारक करे और हमारी जिंदगी का सबसे ज्यादा मुबारक अल्लाह ताला उस लम्हे को बनाए, इस लम्हे हमारी रूह निकलकर उससे मुलाकात के लिए जा रही हो। ये दुआ करो और ये दुआ दो कि अल्लाह ईद भी मुबारक करे, जिंदगी का हर सेकंड मुबारक। मुबारक तो तब होगा जब अल्लाह की मर्जी के मुताबिक गुजरेगा। तो ये दुआ है गोया कि हर जिंदगी का हर सेकंड अल्लाह मुबारक बनाए, और सबसे ज्यादा मुबारक वो घड़ी हो कि जिस घड़ी में हमारी रूह इस जिस्म को छोड़कर अल्लाह की मुलाकात के लिए जाए। तो मुझे याद आ ही गया, तो मैं थका हुआ तो हूं लेकिन एक बात तो अर्ज कर दूं कि हमारे अभी एक दोस्त का इंतकाल हो गया, हमारे एक दोस्त का इंतकाल हो गया, डॉक्टर थे बाय प्रोफेशन, लेकिन दीनी जहन के, उलमा से, बुजुर्गों से, सब दीनी कामों से बहुत मोहब्बत रखने वाले। और मुझे सबसे पहले अगर किसी ने अपने मुल्क में, इंग्लैंड से बाहर अपने मुल्क में दीन की बातें करने के लिए, दीनी दावत के लिए बुलाया, तो इन्होंने बुलाया है सबसे पहले बारबेडोस। इसे दारुल बरी की तरफ से मुझे अमेरिका रमजान में तालिब इल्मी के जमाने में भेजा गया था, लेकिन वो मदरसे ने मुझे भेजा था किसी की दावत पर, वो दावत मदरसे पर आई थी तो मदरसे ने मुझे भेजा, लेकिन यहां किसी ने मुझे बुलाया तो ये सबसे पहले थे। जाकिर शागिल आदमी, तो तकरीबन 10-12 साल से हार्ट के बड़े बड़े आवारिस थे और हर मर्तबा मौत के मुंह से निकलकर वापस आ जाते थे। वो तो उनके बेटे का मेरे ऊपर फोन आया और मैं सोया हुआ था तकरीबन 10:15 बजे सुबह, रात सोया नहीं था, फजर के बाद सोया था, इन्हीं दिनों में अभी सोमवार के दिन पीर के दिन। तो मैं जोहर के लिए जब उठा तो मैंने उनका टेक्स्ट मैसेज देखा 10:15-10:30 बजे कि मैंने तुम्हें फोन किया लेकिन तुमने फोन नहीं उठाया, तो मैं इत्तला कर रहा हूं कि अब्बा का इंतकाल हो गया है। अब बड़े गहरे मरासिम थे, बहुत मोहब्बत का ताल्लुक था डॉक्टर मोहम्मद शफी नकदी, तो बिल्कुल स्टेट ऑफ शॉक में, मतलब एक गम हुआ बहुत ज्यादा। उनकी शफकतें मोहब्बतें रही, एक शायद जितने मुल्कों का मेरा बिल एहतिमाम सफर होता रहता है उसमें जितनी मर्तबा मैं वहां गया उतनी मर्तबा वहां मेरा जलसों में भी तारुफ कराते हैं, तो वो ये कहते हैं कि मौलाना सलीम धोरात इज अ हाउस होल्ड नेम इन बारबाडोस। इस तरह इतना वहां सब हर घर के साथ ताल्लुक, छोटी सी जगह है वो, मोहब्बतें रही, शफकतें रही उनके बिचारों की। तो आदमी बहुत कुछ सोचने लग जाते हैं। तो मुझे ये ख्याल आया कि इनका सुबह 5:30 बजे इंतकाल हुआ है, इसका मतलब ये है कि नींद में इंतकाल हो गया। इसलिए कि अगर कुछ होता तो 2-3 घंटे पहले भी तो फोन आता, ये तो अचानक ही इंतकाल की खबर, तो इन लोगों को भी सुबह को मालूम हुआ ऐसा लगा। इसलिए कि अगर कुछ भी तबीयत में खराबी होती है तो फौरन मुझे फोन करते उनके बेटे। बहरहाल मैंने भी फिर नहीं छेड़ा, मैंने कहा तदफीन तजहीज। तो मैं जोहर के लिए आया, जो कुछ करना था ईसा अलैहि सलाम वगैरह करके, फिर बुखारी शरीफ का सबक पढ़ाने से पहले मैंने उनके बेटे पर ताजियत का एक टेक्स्ट कर दिया और मैंने कहा कि मैं इंशाल्लाह शाम को फोन करूंगा। मैंने रात को फोन किया, तबीयत पर मुझे बहुत असर था, लेकिन उन्होंने मुझे उनकी आखिरी हालत जो बतलाई तो वो सारा गम दूर हो गया। और अभी तक जो है मैं ऐसा सकते में चला जाता हूं जब सोचता हूं कि हमारे डॉक्टर साहब को अल्लाह ने मौत कैसी अता फरमाई, अल्लाह अकबर, इस दौर में। तो बेटे ने कहा कि उनका इस बीमारी में मामूल ये था कि रोजाना 1 बजे उठते थे और 2 बजे इबादत में मशगूल हो जाते थे, और चूंकि इमोबाइल हो गए थे, 2-3 मरतबा गिर गए तो खुद चलने का खड़े होने का कॉन्फिडेंस नहीं था, तो घर में वो इलेक्ट्रिक वाली चेयर में खुद वो ये करते थे। और बेटा बहुत फरमा बरदार, बहुत खिदमत गुजार। तो बेटे ने कहा कि हस्बी मामूल 1 बजे मैंने उनको जगाया, और जगा करके वुजू वगैरह करा करके बिल्कुल उनके पेशाब इस्तिंजा वगैरह, 2 बजे मैंने उनको कुर्सी में बिठाया, और कुर्सी में बैठने के बाद फिर मैं जो दोबारा सो गया, और फिर मैं फजर के लिए उठता हूं। और मामूल ये होता है कि ये अपनी फजर की नमाज पढ़ने के बाद यासीन शरीफ पढ़ते हैं, यासीन शरीफ के बाद कुरान की 1 पारे की तिलावत करते हैं, और फिर हमारी अम्मी को जगाते हैं कि तुम उठ के फजर पढ़ो, और मुझे भी जोर से पुकारते हैं मेरे रूम में, तो मैं भी फिर उठ करके फजर पढ़ता हूं। तो कहा कि बजाय अब्बा के अम्मी ने मुझे पुकारा कि भाई तुम जल्दी कमरे में आओ, उन्होंने मुझे जगाया अम्मी ने। तो कि मैं फिक्र में पड़ गया कि अब्बा कुछ ज्यादा बीमार हो गए हैं, क्या हुआ अचानक। कहा कि अम्मी ने ये कहा कि तुम्हारे अब्बा कुर्सी में बैठे हुए हैं लेकिन कोई हरकत नहीं कर रहे हैं, तो देखो तुम। तो क्या मैंने जाकर देखा तो वो कुर्सी में इंतकाल कर चुके थे। अब मामूल उनका रोजाना का ये था कि 2 बजे इबादत शुरू करते थे तो 5-5:15 बजे तक, जो भी उनका 2 बजे से 5 तक जो भी उनका होगा। और मामूल ये होता था कि ये उसमें जिक्र जहरी करते थे पूरी 12 तस्बीह, ये 40 दुरूद पढ़ते थे, और भी मुख्तलिफ अजकार अवराद वगैरह, तहज्जुद पढ़ते थे, तहज्जुद के बाद तवील दुआ करते थे। तो इतने में ये 2 बजे से लेकर ये सब कुछ करने में फजर की नमाज का अव्वल वक्त शुरू हो जाता था, और माजूर थे तो मस्जिद में जाते नहीं थे। जैसे ही फजर की नमाज का अव्वल वक्त शुरू होता था तो ये फजर की नमाज पढ़ते थे। वो तो कई सालों से है तो घर वालों को मालूम, फिर वो टेबल के ऊपर जो जो चीजें उनकी पढ़ने की रखी हुई, और फजर की नमाज पढ़ने के बाद यासीन शरीफ की तिलावत, यासीन शरीफ की तिलावत के बाद कुरान मजीद। तो बच्चे ने कहा कि इतना तो हमें यकीन था कि 2 बजे से लेकर ये 5 बजे तक की ये इबादतें हैं, उन इबादतों में से किसी इबादत को करते हुए इंतकाल हुआ। अव्वल वहले में तो ये हुआ कि ये तो इंतकाल इबादत करते कर, ये भी बहुत बड़ी चीज थी। लेकिन बेटे ने कहा कि फिर जरा गौर से देखा तो चश्मे पहने हुए थे, और चश्मे उनके सिर्फ रीडिंग थे, ऐसे चश्मे नहीं पहनते थे। तो इसका मतलब ये कि या तो वज़ाइफ पढ़ते हुए गए हैं या कुरान पढ़ते हुए गए हैं, ये दूसरी बातें हुई। और फिर कहा मजीद देखा गया तो हाथ में कुरान मजीद था। इससे ये बातें हुई कि सारी चीजें करके आखिर में यासीन शरीफ और कुरान तक तो पहुंच गए थे। अब पारा खत्म किया नहीं किया, पारा पढ़ते पढ़ते वो, लेकिन जब करीब से देखा कुरान मजीद को तो कुरान मजीद दोनों हाथों में पकड़ा हुआ है और इंतकाल कर गए हैं। तो कुरान खुला हुआ है और कुरान मजीद के आखिरी सफे पर है, यानी इत्तेफाक ये हुआ कि उस दिन खत्म कुरान था उनका, और पढ़ते पढ़ते खत्म कुरान किया और फिर रूह इनकी निकली, और उसी हालत में ऐसे बड़े मजे से बैठे हुए थे वो कुरान हाथ में लेकर। भाई ताज्जुब भी होता है, हैं? आप लोगों को भी पर भी सकता तारी हो गया होगा कि यार अजीब मौत है। बार बार उनका नक्शा मेरे जहन में आ रहा है कि यार हमारे डॉक्टर इतने सीधे सादे लगते थे, और गुस्ताखियां की भी हम उनकी कर लेते थे, मुझसे तो उम्र में बड़े थे, लेकिन उलमा का इस कदर एहतराम, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, कि आप कोई सख्त बात कह दो वगैरह सब। तो मैंने कहा कि असल तो फैसला मौत पर होता है कि यार हमने डॉक्टर साहब की कदर नहीं की, ये अल्लाह की नजर में इतने ऊंचे थे, तो ही तो मौत ऐसी आई है कि बीमारी, और वो बीमारी ऐसी कि 3 घंटे तक रोजाना की इबादत न कर सके। اور سوائے ان اوقات کے کہ جن اوقات میں وہ ہاسپٹل میں ایسی حالت میں تھے کہ ڈاکٹروں کی طرف سے ان کو ممانعت تھی. 40 سال ان پر ایسے گزرے کہ معمولت نہیں چھوٹی, 40 سال ایسے گزرے کہ تہجد کی نماز فوت نہیں ہوئی. اور تہجد کی نماز فوت نہیں ہوئی کا مطلب یہ نہیں کہ عشاء کی بات پڑھ لی, تہجد کی نماز فوت نہیں ہوئی کا مطلب یہ کہ تہجد کے وقت میں اٹھنا معمول تھا ان کا, 1 بجے 2 بجے عبادت میں مشغول ہو جاتے تھے. یہ تو مجھے بھی پتا ہے, اور ہمارے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے ہوں تو ہماری بات وہ بہت دھیان سے سنتے رہیں, لیکن ان کے ہاتھ میں وہ کاؤنٹر والی تسبیح, تو ان کے جتنے ہزار مرتبہ جو پڑھنا ہوتا ہے وہ اسے ضرور پورا کر لیتے ہیں. وہ ڈرائیونگ بھی کرتے ہیں تو وہ ان کے ہاتھ میں وہ کاؤنٹر ہوتا ہے. پہلے تو وہ بڑے بڑے کاؤنٹر تھے نا, تو وہ بڑے ہوتے تھے وہ اسٹیل والا. تو پھر دیکھو جو محنت کرے گا جو کوشش کرے گا تو موت بھی ویسی آئے گی. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے وہ بیت تھے, اس کے بعد ان کے خلفاء کے ساتھ ان کا تعلق رہا, بیت بھی ہوئی, ہمارے ساتھ بھی ان کا بہت اچھا تعلق رہا, گہرا تعلق رہا. اللہ تعالی شانہ ان کو غری کے رحمت فرمائے. تو یہ ایک مزے کی بات تھی, تو بس کر لو بھائی. اللہ تعالیٰ ایسی ہمیں بھی موت نصیب کرے, ایسی ہمیں بھی موت نصیب کرے. وہ تو آباد ہو گئی نا اب ہمیشہ کے لیے. ہمیں تو پتہ نہیں کیا موت کے وقت کیا ہوگا, ڈر لگتا ہے, خوف ہوتا ہے. امید تو اللہ سے رکھتے ہیں لیکن ڈر خوف لگتا ہے کہ کیسی موت آئے گی, کیا ہوگا اس وقت, کس حالت میں ہم جائیں گے. اب جیسے ان کو بھی کچھ پتہ نہیں تھا کہ میری روح ابھی نکلنے والی ہے, لیکن اچھا کام کرتے کرتے نکل گئے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی غلط کام میں مبتلا ہوں اور اس وقت ہماری روح نکل جائے اور ہمیں پتہ بھی نہ ہو کہ میری روح نکلنے والی. ایسا بھی ہوتا ہے. اللہ غری کی رحمت فرمائے, اللہ غری کی رحمت فرمائے, اللہ غری کی رحمت فرمائے. اللہ ہم سب کو بھی ایسی موت نصیب کرے, اس سے بڑھیا موت نصیب کرے, ایسی موت نصیب کرے, اس سے بڑھیا موت نصیب. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ, نشہد ان لا الہ الا اللہ.